एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
आज हम नॉर्मन डेविस की एक बहुत ही प्रभावशाली और जरूरी किताब यूरोप एक इतिहास यानी यूरोप अ हिस्ट्री पर बात करने वाले हैं। मैं हूं मेजबान टू
और मैं हूं मेजबान वन। ये किताब हाँ हजारों पन्नों में फैली है, लेकिन इसका जो दायरा है और नजरिया वो वाकई चौंकाने वाला है। ये यूरोपीय इतिहास को सिर्फ पश्चिमी चश्मे से देखने की जो हमारी आदत है ना, उसे जोरदार चुनौती देती है।
बिल्कुल, और देखिए आज के माहौल में ये और भी जरूरी हो गया है।
हाँ।
जब यूरोप लगातार खबरों में है, चाहे वो यूक्रेन संकट हो या यूरोपीय संघ के अंदर की उठा पटक या फिर पहचान और सीमाओं पर बहसें,
सही कहा,
तो ये समझना जरूरी है कि यूरोप आखिर है क्या। और डेविस की किताब यही दिखाती है, यूरोप मतलब सिर्फ पेरिस, लंदन या बर्लिन नहीं। इसमें वॉर्सॉ, कीव, इस्तांबुल, इनकी भी उतनी ही अहम भूमिका है।
तो चलिए पहले इस विशाल काम के पीछे जो दिमाग हैं नॉर्मन डेविस, उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं।
हाँ।
डेविस जो हैं, वेल्स मूल के एक जाने माने ब्रिटिश इतिहासकार हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं और लंदन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ स्लेवोनिक एंड ईस्ट यूरोपियन स्टडीज में प्रोफेसर भी रहे हैं।
हाँ, और उनकी खासियत है पूर्वी यूरोप, खासकर पोलैंड का इतिहास।
अच्छा।
उनकी किताबें हैं जैसे गॉड्स प्लेग्राउंड, अ हिस्ट्री ऑफ पोलैंड या वार्सो विद्रोह पर राइजिंग 44, ये बहुत मशहूर है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है?
क्या?
वो कई यूरोपीय भाषाएं जानते हैं, पोलिश, रूसी, जर्मन वगैरह।
अरे वाह।
तो इससे उन्हें उन ऐतिहासिक स्रोतों तक पहुंच मिलती है जहां ज्यादातर पश्चिमी इतिहासकार पहुंच ही नहीं पाते।
अच्छा,
तो ये बात उनके नजरिए को खास बनाती है।
बिल्कुल।
इसे हम कह सकते हैं पूर्व से नजरिया। हाँ, कह सकते हैं। वो पश्चिमी यूरोप के इतिहासकारों के जो जाने अनजाने पूर्वाग्रह होते हैं ना, उनको पकड़ पाते हैं और उन कहानियों को सामने लाते हैं जिन्हें अक्सर मतलब नजरअंदाज कर दिया जाता है।
और वो ये काम सिर्फ तथ्य जमा करके नहीं करते, है ना?
नहीं, कमाल की कहानी कहने की कला है उनके पास।
वो इतिहास को जैसे जीवंत कर देते हैं।
बिल्कुल। तो अब आते हैं किताब पर।
जी।
ये आखिर है किस बारे में?
हम्म।
आसान शब्दों में कहें तो ये पूरे यूरोपीय महाद्वीप का इतिहास है,
कहां से कहां तक?
प्रागैतिहासिक काल से शुरू होकर 1990 के दशक में जब सोवियत संघ का पतन हुआ वहां तक।
काफी लंबा समय है।
हाँ, लेकिन ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, ये एक संशोधनवादी इतिहास है।
संशोधनवादी
इसका क्या मतलब हुआ यहाँ?
मतलब ये कि ये इतिहास की जो स्थापित मान्यताएं है ना,
हाँ,
खासकर वो सोच कि पश्चिमी यूरोप ही यूरोप का केंद्र है, उस पर सवाल उठाती है। अच्छा, तो डेविस का मुख्य तर्क क्या है फिर?
उनका मुख्य तर्क ये है कि यूरोपीय इतिहास को समझने के लिए हमें पूरे महाद्वीप को देखना होगा, पश्चिम, मध्य और पूर्व सबको बराबर अहमियत देनी होगी।
सही कहा। वो कहते हैं कि पोलैंड लिथुआनिया राष्ट्रमंडल हो या बाइजेंटाइन साम्राज्य या कीवन लुमुस, ये सभ्यताएं यूरोपीय इतिहास के फुटनोट नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये मुख्य अध्याय है।
और ये सिर्फ कोई भौगोलिक सुधार नहीं है।
नहीं, ये समझने का तरीका है कि यूरोप की पहचान असल में बनी कैसे।
और किताब की बनावट भी सुना है काफी अलग है।
हाँ, वो भी अनोखी है। कहानी तो मोटे तौर पर समय के हिसाब से ही आगे बढ़ती है, 12 अध्यायों में। और हर अध्याय का एक लैटिन शीर्षक है।
अच्छा।
लेकिन हर अध्याय में सैकड़ों छोटे छोटे कैप्सूल्स हैं।
कैप्सूल मतलब दवा वाले?
नहीं, ये जानकारी के छोटे छोटे टुकड़े हैं, किसी खास विषय पर या किसी व्यक्ति पर या घटना पर।
जैसे?
जैसे किसी दार्शनिक का जीवन या किसी खास लड़ाई का ब्यौरा या पता है यहाँ पर की कांटे का इतिहास भी।
अरे वाह, ये तो मजेदार लगता है।
हाँ, ये कैप्सूल बड़े मजेदार हैं। ये आपको मुख्य कहानी से भटकाते नहीं है, लेकिन छोटी छोटी दिलचस्प गहराइयों में ले जाते हैं। तो इससे किताब सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं रह जाती,
बल्कि
संस्कृति, धर्म, विज्ञान, भाषा, समाज, इन सब की एक मिलीजुली जटिल तस्वीर पेश करती है।
तो चलिए अब किताब के कुछ बड़े विचारों और तर्कों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं।
हाँ,
12 अध्यायों की पूरी यात्रा तो खैर यहाँ संभव नहीं, लेकिन डेविस के कुछ मुख्य तर्क वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी तर्क जो आपने भी बताया, पश्चिम को इतिहास के केंद्र से हटाना।
बिल्कुल, डेविस बार बार ये दिखाते हैं कि कैसे सदियों तक पूर्वी रोमन यानी बाइजेंटाइन साम्राज्य, जिसे पश्चिम अक्सर भूल जाता है, वो रोमन परंपराओं, ईसाई धर्म और शास्त्रीय ज्ञान का एक अहम केंद्र बना रहा।
हाँ, जब पश्चिम में जिसे अंधकार युग कहते हैं,
सही,
तब कॉन्स्टेंटिनोपल फल फूल रहा था।
ये हजार साल का इतिहास पश्चिमी कहानी से गायब क्यों है, डेविस ये सवाल पूछते हैं।
और सिर्फ बाइजेंटाइन ही क्यों, डेविस कीवन रूस के महत्व को भी उजागर करते हैं।
कीवन रूस, जो आज की यूक्रेन, बेलारूस और रूस का पूर्वज है।
हाँ, मध्ययुग में वो एक विशाल और प्रभावशाली राज्य था।
और फिर पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल, पुनर्जागरण और उसके बाद के दौर में यूरोप का सबसे बड़ा राज्य था वो, और धार्मिक सहिष्णुता का एक अनूठा उदाहरण भी।
तो इन ताकतों को पश्चिमी इतिहास में हाशिए पर क्यों रखा गया?
डेविस तर्क देते हैं कि ये अनदेखी अक्सर बाद की राजनीतिक वजहों से हुई।
जैसे?
खासकर शीत युद्ध के दौरान, जब पश्चिम बनाम पूर्व का विभाजन बहुत गहरा हो गया था।
अच्छा।
लेकिन इतिहास में ये विभाजन हमेशा इतना साफ नहीं था। डेविस हमें याद दिलाते हैं कि यूरोप हमेशा से एक जटिल, अंतर्गुम्फित महाद्वीप रहा है।
सब कुछ जुड़ा हुआ था, मतलब?
हाँ, जैसे मंगोलों के खतरे ने पश्चिम को प्रभावित किया, ऑटोमन साम्राज्य की बढ़त ने मध्य यूरोप की राजनीति तय की। दूसरा बड़ा विचार जो डेविस सामने लाते हैं वो ये कि यूरोप कोई स्थिर चीज नहीं है।
हाँ, ये एक लगातार बदलता हुआ विचार है।
इसकी भौगोलिक सीमाएं वो हमेशा बदलती रही हैं।
बिल्कुल। क्या रूस यूरोप का हिस्सा है, कहाँ तक, क्या तुर्की, ये सवाल आज भी बहस का मुद्दा है।
सही कहा।
डेविस दिखाते हैं कि इतिहास में भी ये सीमाएं और यूरोपीय होने का मतलब हमेशा बदलता रहा है।
जैसे प्राचीन ग्रीस, वो हेलास जिसे कहते हैं, वो सिर्फ एथेंस या स्पार्टा नहीं था।
नहीं,
वो भूमध्य सागर और काला सागर तक फैला एक सांस्कृतिक क्षेत्र था।
और रोमन साम्राज्य भी सिर्फ रोम नहीं था,
उसका पूर्वी हिस्सा तो कहीं ज्यादा टिकाऊ साबित हुआ।
और जिसे अंधकार युग कहा गया,
डेविस उसे उत्पत्ति यानी ओरिगो का युग कहते हैं, नए राज्यों, नए पहचानों के बनने का समय।
इसी बदलते विचार से जुड़ा है डेविस का तीसरा अहम बिंदु, कि इतिहास पूर्व निर्धारित नहीं होता।
हाँ, वो इस धारणा को चुनौती देते हैं कि इतिहास किसी तय रास्ते पर बढ़ रहा था, मान लीजिए उदार लोकतंत्र की तरफ। वो भाग्य, दुर्घटनाओं और उन मोड़ों पर जोर देते हैं जहां चीजें बिल्कुल अलग हो सकती थीं।
जैसे?
जैसे अगर ब्लैक डेथ, वो पेस्टिस, उसने यूरोप की आबादी का इतना बड़ा हिस्सा खत्म ना किया होता तो क्या होता?
सोचने वाली बात है।
या फिर 20वीं सदी का वो भयानक अंधकार, टेनेब्रे,
दो विश्व युद्ध, होलोकॉस्ट, तानाशाही का उदय।
हाँ, डेविस इसे यूरोपीय गृह युद्ध कहते हैं, और वो खास तौर पर पूर्वी यूरोप के उन इलाकों पर ध्यान दिलाते हैं जिन्हें इतिहासकार टिमोथी स्नाइडर ने ब्लड लैंड्स कहा है।
ब्लड लैंड्स?
हाँ, जहाँ हिटलर और स्टालिन दोनों के शासन में करोड़ों लोग मारे गए। ये यूरोप की तथाकथित प्रगति की कहानी पर एक भयानक सवालिया निशान है।
बिल्कुल। और ये हमें डेविस के एक और जरूरी संदेश तक लाता है, यूरोप की दोहरी विरासत। ये वही महाद्वीप है जिसने पुनर्जागरण, रेनाटियो, वैज्ञानिक क्रांति, ज्ञानोदय, लूमिन जैसे शानदार बौद्धिक आंदोलन दिए।
हाँ।
वहीं इसी ने धार्मिक युद्ध, धर्माधिकरण, साम्राज्यवाद और 20वीं सदी की बर्बरता को भी जन्म दिया।
और डेविस इन दोनों पहलुओं को बहुत ईमानदारी से दिखाते हैं, कोई लीपापोती नहीं करते।
तो इन गहरी और कई बार परेशान करने वाली बातों से हम क्या सीख सकते हैं?
मुझे लगता है सबसे पहली सीख तो यही है कि हमें इतिहास को एक तरफा नजरिए से देखने से बचना होगा। डेविस हमें उस पश्चिम केंद्रित सोच से बाहर निकालकर एक ज्यादा संतुलित, ज्यादा समावेशी तस्वीर दिखाते हैं।
हाँ, और ये सिर्फ कोई अकादमिक बात नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
आज जब हम यूरोप की खबरें सुनते हैं तो डेविस का नजरिया हमें उन घटनाओं की गहरी जड़ों को समझने में मदद करता है।
सही। यूक्रेन या बाल्कन के तनाव सिर्फ आज की राजनीति नहीं है, उनके पीछे सदियों का इतिहास है जिसे अक्सर पश्चिमी मीडिया नजरअंदाज कर देता है।
दूसरा सबक है पहचान की जटिलता को समझना।
हाँ, यूरोपीय होना क्या है, या फिर अपने संदर्भ में सोचे तो भारतीय होना क्या है। डेविस दिखाते हैं कि ये पहचानें सीधी साधी नहीं होती, ये कई धागों से बुनी होती हैं, इनमें अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों, अनुभवों का योगदान होता है।
कोई भी पहचान शुद्ध या एकल नहीं होती।
बिल्कुल। इस लिहाज से डेविस का काम हमें भारत के अपने इतिहास और पहचान के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है।
कैसे?
क्या हम भी कभी कभी किसी एक क्षेत्र या एक रिवायत को ही पूरे भारत का इतिहास मान लेते हैं? क्या हम अलग अलग क्षेत्रीय कहानियों और दृष्टिकोणों को बराबर महत्व देते हैं?
सोचने वाली बात है।
डेविस का तरीका हमें अपने पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाने के लिए उकसाता है।
और तीसरा सबक, इतिहास की आकस्मिकता।
हाँ, ये मानना कि सब कुछ पहले से तय था, ये हमें थोड़ा आलसी बना सकता है। डेविस हमें याद दिलाते हैं कि छोटे छोटे फैसले, अप्रत्याशित घटनाएं, ये इतिहास का रुख मोड़ सकती हैं।
तो ये एक तरह से हमें जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है।
बिल्कुल, कि हमारे आज के फैसले भविष्य को कैसे आकार देंगे।
किताब में कुछ ऐसे विचार हैं जो वाकई दिमाग में अटक जाते हैं।
हाँ है।
जैसे डेविस कहते हैं, हर पीढ़ी को अपना इतिहास लिखने की जरूरत है क्योंकि उसे जानना होता है कि वो जैसी है वैसी कैसे बनी। इसका क्या मतलब समझें?
मेरे ख्याल से इसका मतलब है कि इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हर पीढ़ी अपने वर्तमान के सवालों और जरूरतों के हिसाब से अतीत को देखती है, उसकी नई व्याख्या करती है, और ये जरूरी भी है।
क्यों?
ताकि हम पुराने पूर्वाग्रहों से मुक्त हो सके और इतिहास को ज्यादा प्रासंगिक बना सकें। डेविस खुद यही कर रहे हैं। वो शीत युद्ध के बाद की पीढ़ी के लिए यूरोप का इतिहास लिख रहे हैं, जिसमें पूर्व और पश्चिम का विभाजन अब पुराना पड़ चुका है।
अच्छा, एक और दमदार विचार है, यूरोप अपने केंद्रों की तरह ही अपनी परिधियों का भी उत्पाद है।
हाँ,
ये पारंपरिक सोच को पलट देता है ना।
बिल्कुल, आमतौर पर हम सोचते हैं कि इतिहास का केंद्र ही सब कुछ तय करता है और किनारे वाले इलाके सिर्फ उसका असर झेलते हैं।
हाँ,
लेकिन डेविस कहते हैं कि नहीं, किनारे वाले इलाके जैसे पूर्वी यूरोप, बाल्कन या आयरलैंड, ये भी यूरोप को बनाने में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं।
उनका असर सिर्फ ग्रहण करने वाला नहीं रहा,
नहीं, योगदान देने वाला भी रहा है।
और फिर वो सीधी बात, यूरोप का इतिहास पश्चिम का इतिहास नहीं है, ये तो जैसे किताब का मूल मंत्र ही लगता है।
हाँ, ये उस समीकरण को तोड़ता है जो अक्सर हमारी सोच में बैठ गया है कि यूरोप मतलब फ्रांस, जर्मनी, यूके। डेविस इसे शीत युद्ध और पश्चिमी साम्राज्यवाद की देन मानते हैं और हमें एक ज्यादा सच्ची, ज्यादा चौड़ी तस्वीर देखने को कहते हैं।
धर्म पर भी उनका एक दिलचस्प नजरिया है। ईसाई धर्म ने यूरोप को ईसाई नहीं बनाया, यूरोप ने यूरोपीय धर्म को यूरोपीय बनाया। ये थोड़ा चौंकाने वाला लगा मुझे।
हाँ, ये गहरा विचार है। इसका मतलब ये है कि जब ईसाई धर्म यूरोप में फैला तो वो यहाँ की मौजूदा संस्कृतियों, भाषाओं, सामाजिक ढांचों से टकराया और खुद भी बदल गया।
अच्छा।
हाँ, अलग अलग यूरोपीय समाजों ने ईसाई धर्म को अपने अपने तरीके से अपनाया और ढाला। तो ईसाई धर्म ने यूरोप को बदला, लेकिन यूरोप ने भी ईसाई धर्म को बदल दिया। एक दो तरफा प्रक्रिया थी।
और अंत में एक उम्मीद भरा विचार, यूरोप की विविधता इसकी कमजोरी नहीं बल्कि इसकी ताकत है।
हाँ, ये डेविस का यूरोप के भविष्य को लेकर शायद एक आशावादी नजरिया है। उनका मानना है कि यूरोप की रचनात्मकता, उसका लचीलापन, उसकी बार बार मुश्किलों से उभरने की क्षमता, ये इसी विविधता से आती है।
तो ये आज के यूरोप के लिए भी एक संदेश है।
बिल्कुल, कि एकता का मतलब एक रूपता नहीं होना चाहिए।
तो इन सब बातों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देख सकते हैं? एक तो साफ है दुनिया को समझने का नजरिया।
हाँ,
जब हम अंतर्राष्ट्रीय खबरें पढ़ते या देखते हैं तो हम ज्यादा गहराई से सोच सकते हैं।
हाँ, हम पूछ सकते हैं कि क्या ये कहानी पूरी है, किसका नजरिया पेश किया जा रहा है, किसे नजरअंदाज किया जा रहा है।
हाँ, ये आलोचनात्मक सोच, जिसे क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, उसको बढ़ावा देता है।
बिल्कुल, हम सिर्फ हेडलाइंस पर यकीन करने के बजाय चीजों की तह तक जाने की कोशिश कर सकते हैं।
दूसरा, ये हमें अपनी और दूसरों की पहचान को लेकर ज्यादा संवेदनशील बनाता है।
हाँ, हम समझते हैं कि पहचानें कितनी जटिल और मिलीजुली होती हैं। इससे शायद हम स्टीरियोटाइप से बच सकते हैं
और सांस्कृतिक विविधता की कद्र करना सीखते हैं।
हाँ, डेविस दिखाते हैं कि यूरोप की समृद्धि अलग अलग संस्कृतियों के मेल जोल से बढ़ी है। ये बात हमारे अपने समाज के लिए भी उतनी ही सच है।
विविधता को बोझ नहीं बल्कि ताकत समझना।
सही कहा। और एक चेतावनी भी है इसमें।
वो क्या?
20वीं सदी के इतिहास का जो भयानक हिस्सा डेविस दिखाते हैं, नफरत, राष्ट्रवाद, नस्लीय सफाई की विचारधाराएं, वो हमें याद दिलाता है कि सभ्यता कितनी नाजुक हो सकती है, कैसे पढ़े लिखे समाज भी बर्बरता की ओर जा सकते हैं, ये सबक भूलना खतरनाक हो सकता है।
मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ा टेक अवे ये था कि पूर्वी यूरोप के इतिहास को कितना मतलब व्यवस्थित तरीके से मुख्यधारा की कहानी से बाहर रखा गया है। पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल जैसी ताकतवर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इकाई के बारे में मैंने पहले इतना कम क्यों सुना था। ये किताब उस असंतुलन को ठीक करती है और इतिहास की एक पूरी नई परत खोल देती है।
और मेरे लिए यूरोप की पहचान का वो लगातार बदलते रहना और उसका लचीलापन, वो बहुत प्रभावशाली था।
हाँ।
ये दिखाता है कि पहचान कोई जड़ चीज नहीं है और कैसे भयानक आपदाओं के बाद भी, चाहे वो प्लेग हो, विश्व युद्ध हो या शीत युद्ध का विभाजन, ये महाद्वीप बार बार खुद को फिर से गढ़ता रहा है, राख से उठ खड़ा हुआ है। ये कमाल की रेजिलियंस है।
बिल्कुल, शायद सबसे कीमती सबक यही है कि यूरोप की कहानी हमेशा से समावेशी रही है, अलग अलग प्रभावों को आत्मसात करने की रही है, ना कि किसी एक शुद्ध पहचान की। और इसे समझने के लिए हमें अपने राष्ट्रीय या पश्चिमी चश्मों को उतारना होगा।
सही कहा, ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, ये सोचने का एक नया ढांचा देती है। ये दिखाती है कि ज्यादा समावेशी इतिहास न सिर्फ ज्यादा सच्चा होता है, बल्कि आज की दुनिया को समझने और बेहतर बनाने के लिए ज्यादा उपयोगी भी होता है।
तो ये सिर्फ अतीत की यात्रा नहीं है?
नहीं, ये वर्तमान और भविष्य के लिए गाइड है।
डेविस का नजरिया हमें सोचने पर मजबूर करता है। इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है ना?
है ना? हाँ, अक्सर ऐसा कहा जाता है।
लेकिन क्या हम हारने वालों, हाशिए पर धकेले गए लोगों की कहानियों को सुने बिना पूरी सच्चाई जान सकते हैं? और अगर नहीं, तो आज हम किन कहानियों को अनसुना कर रहे हैं?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।